सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धमणन्तमणिन्दिय मणुव मम पथसोखमणवज्जं केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो मूल शास्त्र षटखंडागम पर लिखी थी, जिसके कर्ता है भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी, और जो उपदेश हमें मूल श्री भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ हम पृष्ठ संख्या 537 पर आ गए हैं। ये जो हम 20 प्ररूपणाएं देख रहे हैं, देखो पहले भाग में तो सत प्ररूपणा जीवों की अस्थि सिद्ध की, अब यहाँ तो 20 प्ररूपणाओं के द्वारा उनका वर्णन चलेगा। तो 20 प्ररूपणाओं में हमने गुणस्थानों की प्ररूपणा देखी, अब मार्गणाओं में प्ररूपणा देख रहे हैं। उसमें गति मार्गणा में हमने नरक गति देखी, तिर्यंच गति देखी, मनुष्य गति भी देखी, अब देव गति की बात चालू कर दी है। उसमें हमने सामान्य देवों की बात की थी, सामान्य से देवों के कौन कौन से आलाप होते हैं उसकी बात हमने की थी। अब यहाँ जो द्रव्य लेशा संबंधी यहाँ विशिष्ट विचार चल रहा है, शंका समाधान, उसमें हम 537 पृष्ठ पर आए हैं, तो उसका फलितार्थ क्या निकला उसको हम फिर पढ़ेंगे, जो ऊपर का पैराग्राफ के अंतिम तीन लाइन है। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह फलितार्थ निकला, यानी यह तात्पर्य निकला कि वर्णनामा नाम कर्म के उदय से भवनवासी वानव्यंतर और ज्योतिषी देवों के द्रव्य की अपेक्षा छहों लेशाएं होती है। ऊपर के स्वर्गों में जो जो भाव लेशा है वैसी वैसी द्रव्य लेशा पाई जाती है, परंतु ये भवनत्रिक देवों में छह लेशाएं, द्रव्य की बात चल रही, द्रव्य की छह लेशाएं पाई जाती है, तथा भवनत्रिक से ऊपर के देवों के तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं होती है, यानी अपनी अपनी लेशा होती है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ते हैं। शंकाकार पूछता है, बहुत वर्ण वाले जीव शरीर की एक लेशा कैसे बन सकती है? यानी अभी अपनी बात करेंगे, कोई गोरा है हा? तो उसकी जीव तो लाल है, खून लाल है, बाल काले है कहो या सफेद है, तो अलग अलग जो अवयव है उनके रंग अलग अलग है, फिर भी किसी की आंखें भी नीली होगी, तो ऐसे अनेक वर्ण वाले हैं, फिर भी उसके एक लेशा क्यों कहते हैं? तो उसका समाधान करेंगे। समाधान नहीं, क्योंकि प्राधान्य पद का आश्रय कर काक कृष्ण है, इस प्रकार पांचों वर्ण वाले काक को जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रधान पद यानी मुख्यता, ये जो एवरेज ज्यादा है ऐसी, तो पांचों वर्ण वाले काक को, पांच वर्ण उसमें भी पाए जाएंगे, पांच वर्ण वाले अलग अलग भी हो सकते हैं, या एक ही कौवा जो है उसके भी जो अलग अलग अवयव है उसमें भी कलर्स हो गए। तो पांचों वर्ण वाले काक को जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं, हमने देखे ना, जैसे तोता हरा होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर वगैरह वहाँ तो लाल भी तोते हैं, अलग अलग कलर के तोते पाए जाते हैं, तो मुख्यता किसकी है, हरे रंग की, तो वहाँ हरा हम कहेंगे। राजहंस में भी देखा हमने, राजहंस तो धवल शुभ्र होता है, परंतु काले वर्ण के राजहंस भी, जैसे कृष्ण हंस कहते हैं उसको, वो भी पाए जाते हैं। मुख्यता किसकी है, इसलिए प्राधान्य पद कहा, मुख्यता की अपेक्षा से वो एक कलर कहा जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में द्रव्य से छहों लेशाओं के होने पर भी एक वर्ण वाली लेशा के व्यवहार करने में कोई विरोध नहीं आता। यानी शरीर में जो अवयव अलग अलग है उसमें तो अलग अलग रंग है, जैसे तोता तो हरा है और उसकी चोंच लाल है, फिर भी उसको हम हरा कहेंगे, इस तरह। अब द्रव्य लेशा आलाप के आगे, यहीं पर रुकवाया था ना शंकाकार ने और शंका समाधान चला। ये कौन सा आलाप हम देख रहे थे, देखो 537 पेज पर देखना। पेज पर रुकवाया था उसने, पर्याप्त सामान्य देवों के आलाप कहने पर। देवों में पर्याप्तों का आलाप चल रहा है और उसमें हमने क्रम से देखते देखते हम द्रव्य लेशा तक आए थे। आओ, तो द्रव्य लेशा तक हम आए थे और वहीं पर शंका समाधान शुरू हुआ था कि छह लेशा द्रव्य की छह लेशा देवों में कैसी पाई जाती है, तो उसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया था और वहां बताया था कि भवन त्रिकों में तो द्रव्य की छह लेशाएं पाई जाती है और जो ऊपर के स्वर्गों के देव है वहां अपनी अपनी लेशा पाई जाती है। देखो 534 पेज निकालना, हमारा जो आलाप आधा रहा था और उसी में जो शंका चालू हो गई थी उसमें हम पढ़ेंगे। अभी हमारी देवगति की बात चल रही है, मार्गणा में मनुष्यों की बात हो गई, देवगति में अभी हम यहाँ पढ़ते हैं उन्हीं पर्याप्त सामान्य देवों के आलाप कहने पर। पहले हमने देवों का सामान्य आलाप देखा था पर्याप्त और अपर्याप्त मिलकर। 534 पर वहां से अपना रेफरेंस लेके हम आगे बढ़ेंगे। देखो मैं इसको पढ़ती हूँ। तो देवों में आदि के चार गुणस्थान होते हैं, एक संगी पर्याप्त जीव समास है, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, वैकृत का योग है तो नव योग, परंतु अभी यहाँ तक तो हम मनुष्य गति में तो औदारिक औदारिक कहते आए, अभी यहाँ वैकृत का योग है। स्त्री और पुरुष ये दो वेद, ये बात ख्याल में रखना। मनुष्यों में और तिर्यंचों में तो तीनों वेद कहे थे और नारकियों में नपुंसक वेद कहा था, देवों में तो स्त्री और पुरुष दो ही वेद हो गए। चारों कषायें, तीनों अज्ञान और आदि के तीन ज्ञान, क्योंकि हमें सामान्य सभी देवों की चर्चा कर रहे हैं इसलिए सभी तीन ज्ञान और अज्ञान, ये छह ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन और द्रव्य से छह लेशा यहाँ कहा था और उस पर बहुत चर्चा निकली थी और उसका चर्चा समाधान उसको हमने देखा था। अब हम 538 पृष्ठ पर आए हैं, 538 पर। अब सेकंड लाइन वहां पढ़ेंगे कि द्रव्य लेशा आलाप के आगे, अभी भाव की लेशा बताने के पहले ये चर्चा हुई थी ना, तो देवों में भाव की कौन कौन सी लेशा होगी, पर्याप्त जीवों की बात चल रही है। तो पर्याप्त जीवों में भाव से तेज, पद्म और शुक्ल लेशा। जब हमने देवों का सामान्य आलाप देखा था पिना, तो हमने कहा था भाव से छह लेशा होती। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो भवनत्रिक में जन्मते हैं तो उनके अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ लेशा होती है और इसलिए जब पर्याप्त अपर्याप्त का मिलकर जो सामान्य आलाप देखा था तो उसमें हमने भाव से छह लेशाएं कही थी। अब यहाँ पर्याप्त देवों की बात चली है, भले वो भवनत्रिक वाले हो या ऊपर के स्वर्गों के हो, तो वहाँ अपने अपने स्वर्ग की, परंतु ये तीन शुभ में से कोई ना कोई होगी, सबको इकट्ठा हम कह रहे हैं इसलिए तीन शुभ लेशा कहेंगे। अलग अलग स्वर्गों की बात करेंगे तो भवनत्रिक में कौन सी होती है पर्याप्त में, तो हम कहेंगे पीत है, सौधर्मेशान में पीत है, फिर वो मध्यम पीत ऊपर हो जाएगी, इस तरह से हमने उसको भी कल देखा था। तो भाव से तीन शुभ लेशा, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक दोनों है और छह सम्यक है। पर्याप्त अवस्था में औपशमिक किस तरह होगा, कौन सा औपशम, द्वितीय औपशम होगा कि पहला प्रथम, हाँ पर्याप्त अवस्था की बात कर रही हूँ। देखो द्वितीय औपशम तो अपर्याप्त अवस्था में होता है, मनुष्य वाला जो द्वितीय औपशम मैंने श्रेणी चंद्र के सन्मुख उसने द्वितीय औपशम किया था, वहीं पर मरकर वो देव में गया तो अपर्याप्त अवस्था में द्वितीय औपशम था और द्वितीय औपशम में से वो क्षोपशम हो जाता है एक अंतर्मूर्त में, जब पर्याप्त होता है वो क्षोपशम उसके पहले ही हो जाता है। तो यहाँ जो पर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन कहा है वो प्रथम औपशम, मिथ्या दृष्टि देव औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करेंगे। हमने देखा ना औपशमिक सम्यक तो चारों ही गति के मिथ्या दृष्टि जीवों को हो सकता है, प्रथम उपशम सम्यक तो, उस अपेक्षा से देव जो मिथ्या दृष्टि है पर्याप्त तो, वो वहाँ प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करेंगे, उस अपेक्षा औपशमिक भी है, वेदक यानी क्षौपशमिक भी है और क्षायिक भी है, तीनों होते हैं। हाँ हाँ, देखो आपका ऐसा प्रश्न है, यहाँ जो क्षौपशमिक ही लेना कि कृतकृत्य लेना, कृतकृत्य तो हो भी सकता है परंतु देव और मनुष्यों में अपर्याप्त अवस्था में ऑर्डिनरी क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व भी होगा, कृतकृत्य तो होगा ही, ऑर्डिनरी है तो कृतकृत्य भी हो सकता है, क्योंकि कृतकृत्य वेदक के साथ चारों ही गति में जा सकता है, परंतु नरक और तीरंज में जाने वाला ऑर्डिनरी क्षौपशमिक नहीं होगा। ये बात कल भी आई थी, फिर हमने दोबारा उसको देखा था तो उसमें ऐसा स्पष्ट लिखा है, देखो पृष्ठ संख्या निकालना 438 के पहले पहले होगा, देखो पेज नंबर 434। देखो नीचे का जो समाधान है उसमें तीसरे लाइन के अंत के शब्द से शुरू करेंगे, वेदक लिखा है ना वहां से, तीसरे लाइन के अंत में वेदक सम्यक्त्व तो देव और मनुष्यों के अपर्याप्त काल में पाया ही जाता है, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व के साथ मरण को प्राप्त हुए देव और मनुष्यों के परस्पर गमनागमन में कोई विरोध नहीं पाया जाता, यानी क्षोभशम सम्यक तो बना रहे, चालू रहे और मनुष्य मरकर देव में भी जाता है, या देव क्षोभशम सम्यक दृष्टि मरकर मनुष्य में भी आता है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, ये तो रूल हो। कृतकृत्य वेदक तो जा ही सकता है, उसमें तो कोई हर्जा ही नहीं है, परंतु ऑर्डिनरी जो वेदक वाला है, जो कृतकृत्य नहीं है ऐसा जो क्षोभशम सम्यक दृष्टि है, वो देव या मनुष्य मरकर परस्पर में गमन होता है, ये मनुष्य मरकर देव में या देव मरकर मनुष्य में आ सकता है क्षयोपशम सम्यक्त्व के साथ। अभी अगला रूल देखना, कृतकृत्य वेदक अपेक्षा तो वेदक सम्यक्त्व तिर्यंच और नारकी जीवों के अपर्याप्त काल में भी पाया जाता है, यानी तिर्यंच और नारकियों के अपर्याप्त काल में जब जब हम वेदक सम्यक्त्व कहते हैं तो वो कृतकृत्य वेदक ही होगा, ऑर्डिनरी वेदक नहीं होगा, है ना। यहाँ भी जो लिखा है काल में भी पाया जाता है, वो चारों गतियों की बात चल रही है, इसलिए देव और मनुष्यों में तो क्षोभशम सम्यक तो होता ही है, नारकी और तिर्यंचों में भी होता है, परंतु वो भी के लिए एक स्पेशल कैटेगरी बताई, कौन सा वेदक है, कृतकृत्य वेदक, यानी चार गतियों के अपर्याप्त अवस्था में सम्यक तो कौन सा ऐसा देखेंगे, तो देवों के अपर्याप्त में तो द्वितीय ऑप्शन भी होगा, ऑर्डिनरी क्षोभशम होगा, कृतकृत्य वेदक भी होगा, क्षायिक भी होगा, है ना। मनुष्यों में अपर्याप्त अवस्था में सभी हो गया, औपशमिक भी होगा, औपशमिक नहीं होगा, क्षौपशमिक क्षायिक और कृतकृत्य वेदक होगा मनुष्य की अपर्याप्त में, मनुष्य की अपर्याप्त अवस्था में कृतकृत्य वेदक कैसे होगा, मनुष्य में आने वाला जी, मनुष्य अपर्याप्त कब होगा, जब कहीं से मरकर मनुष्य में आएगा, देव से आएगा तो वहां अगर वो क्षायिक की शुरुआत करता तो कृतकृत्य वेदक से हम कहेंगे कि आता है, नहीं समझा। देखो कृतकृत्य वेदक की यानी क्षायिक सम्यक्त्व की शुरुआत कौन करता है, कर्म भूमिका मनुष्य। अब वो कृतकृत्य वेदक हुआ और मर गया उसी समय, अभी उसका सम्यक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व तो क्षय कर दिया, सम्यक प्रकृति अभी बाकी है उसकी, उदय रूप है, इसलिए उसको वेदक सम्यक दृष्टि कहेंगे, परंतु मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर चुका है, इसलिए उसका नाम है कृतकृत्य वेदक। सत्ता में अभी उसको वो दो प्रकृति है ही नहीं है, ख्याल है ना। तो ऐसा जीव मरकर चारों गति में जा सकता है, यानी मनुष्यों में वो कृतकृत्य वेदक कब कहेंगे, भोग भूमि वाले, कर्म भूमि वाले में नहीं। भोग भूमि वाला मनुष्य या भोग भूमि वाला तिर्यंच या देव या नारकी, तो उस अपेक्षा कृतकृत्य वेदक वहां है, बराबर नहीं। देखो फिर
देखो मैं बात बताता हूँ, एक मिनट आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। पहले में पहले जो जीव क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि है वह कर्म भूमि का मनुष्य किसी केवली या तीर्थंकर के पादमूल में ऐसा पुरुषार्थ करता है कि वो क्षयक्षमिक में से क्षायिक सम्यक होने को चालू हो जाता है, तो उसके लिए उसके कोई प्रोसेस है। पहले वो अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ का वो अभाव कर देता है, नष्ट कर देता है, फिर बाद में एक अंतर्मुहूर्त रुकता है, फिर बाद में जो मिथ्यात्व जो अभी उसके सत्ता में था उसको खत्म खलास करता है, खलास करता है ना, वो टर्न होके सम्यक मिथ्यात्व रूप होता है, फिर एक अंतर्मुहूर्त रुकता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व को नष्ट करता है, अभी उसके एक अंतर्मुहूर्त रुकता है, अभी उसके साथ सिर्फ सम्यक प्रकृति बाकी है। अभी सम्यक प्रकृति जब बाकी है तब वो है तो क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि अभी भी, क्योंकि उसका सम्यक तो टूटा नहीं है और ना अभी क्षायिक हुआ है। तो ऐसे क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि को वेदक कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहेंगे। वेदक का अर्थ ही क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि है। हाँ
देखो देखो, वेदक कहो या क्षयक्षम कहो एक ही बात,
दोनों का अर्थ एक ही है। अब वो क्या होता है कि वो अभी उस समय उसका मरण होगा, मनुष्य वाला है ना, मनुष्य ही क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकेगा, मतलब शुरुआत करेगा, तो वो वहां से कहीं अन्य मरकर जावे, तो वहां जाने के बाद वो सम्यक प्रकृति है उसको नष्ट करेगा और वहां क्षायिक सम्यक दृष्टि, हाँ वो चारों गति में जाती है।
मनुष्य कृतकृत्य मरकर मनुष्य में जाएगा तो उसके ऑप्शन में वो कृतकृत्य वेदक होगा,
वो भोग भूमि में जाएगा,
भोग भूमि
और नरक की आयु प्रथम बांधी होगी, उधर जाएगा तो उधर क्षायिक सम्यक दृष्टि पूरा करेगा। वैसे देवगति में ऐसे चारों तीरंच में भी भोग भूमि में जाएगा, इस तरह से हमने देखा। कृतकृत्य वेदक यानी जिसने करने जैसा सब कुछ कर लिया, अभी बस बाकी थोड़ा सा बाकी है सम्यक प्रकृति को उड़ाने का है। और वेदक का अर्थ ही क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि है। अभी इसमें और एक नियम है कि कोई चालू कर लेता है अनंतानुबंधी को नष्ट किया, अभी मिथ्यात्व वगैरह वगैरह, तो आखिरी जो अंतर्मुहूर्त तक वो रुकता है जब तक उसका मरण नहीं होता है। अभी सम्यक प्रकृति बाकी है और एक अंतर्मुहूर्त रहे तो वहां से उसका मरण हो सकता है। अभी आप बताइए।
देखो ये तीन प्रकृति यहाँ दर्शन मोहिनी की बताई, पहले में पहले यानी क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है यानी क्या होता है, तो उसके पहले ये क्षोभम सम्यक दृष्टि है। क्षोभम सम्यक दृष्टि है तो उसकी ये जो तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन उभी लकीर हमने लिखी ना, तो ये नीचे तक सम्यक प्रकृति दिखाई है और सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व ऊपर थोड़े ऊपर दिखाई, उसका अर्थ क्या होता है, वो उदय में नहीं है, एक सम्यक प्रकृति उदय में है। इस ये वेदक सम्यक दृष्टि की पोजीशन है। क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि को या वेदक सम्यक दृष्टि, उदय किसका है, सम्यक प्रकृति का, और ये जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है वो सत्ता में है, तो वो क्या होते हैं, तो वो सम्यक प्रकृति रूप से होकर उदय में आते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे उसका स्थिति पूरी होगी तो वो सम्यक प्रकृति रूप होते 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 ऐसा क्षयक्षम सम्यक तो हमने देखा 66,000+66,000 इतना उत्कृष्ट काल तक यही पोजीशन बन सकती है। अब कोई जो क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है यानी क्या होता है, तो ये जो मिथ्यात्व का अभी हमने ये उभी लकीर दिखाई है, इसके सभी परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो जाते हैं, सभी के सभी सत्ता में पड़े हुए सारे ही, उसको कहेंगे मिथ्यात्व का क्षय हुआ। क्षय हुआ यानी वो अभी परमाणु तो है जीव के साथ ही पड़े हैं, परंतु वो मिथ्यात्व रूप से अभी नष्ट हो गए, अभी वो दोबारा मिथ्यात्व रूप से नहीं हो गए, तो ये अंतर मुहूर्त में ये एक एक लौट करके पूरे के पूरे मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गए। अब जीव की सत्ता में ये दो प्रकृतियां हैं और उदय किसका चल रहा है, हाँ सम्यक प्रकृति है, उसको वेदक ही कहेंगे अभी, अभी इसको कृतकृत्य वेदक नहीं कहेंगे क्योंकि अभी है सम्यक मिथ्यात्व यहाँ बाकी है, सत्ता में पड़ा है। अभी एक अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व को टर्न कर दिया, फिर एक अंतर्मुहूर्त विश्राम लिया, फिर जो सम्यक मिथ्यात्व है एक अंतर्मूर्त काल में थोड़े 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 परमाणु करके सभी पूरे के पूरे, अब ये सम्यक प्रकृति ये सब जाड़ा हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के सभी जो परमाणु हैं वो उस रूप हो गए। यानी अब इस पोजीशन में क्या हुआ, सम्यक मिथ्यात्व के सभी परमाणु सम्यक प्रकृति रूप हो गए। अभी भी उदय किसका चल रहा है, सम्यक प्रकृति का, तो इसको हम वेदक कहेंगे। अनंतानुबंधी का सबसे पहले होता है, मिथ्यात्व के भी पहले, मिथ्यात्व के पहले। ये तो हमने अनंतानुबंधी का होने के पश्चात की पोजीशन बता दी। अनंतानुबंधी का क्या हुआ था, वो तो अन्य तीन रूप परिणमित होकर नष्ट हो गए, ख्याल है ना। अब ये सम्यक प्रकृति रही है, अभी इसका उदय चल रहा है, और सत्ता में तो पूरा जो मोहनीय का द्रव्य है सब अभी सम्यक प्रकृति रूप से पड़ा है, दर्शन मोहनीय का। वो बताए ना, देखो पहले अनंतानुबंधी के चार का उसने नष्ट किया, अन्य प्रकृति रूप से संक्रमित हो गए, फिर एक अंतर्मूत रुका, फिर मिथ्यात्व का क्षय किया, फिर एक अंतर्मूत विश्राम लिया कहते उसको, फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय किया, क्षय किया ने अभी कर्म निर्जरा नहीं हुई उसकी, वो संक्रमित हुआ है, संक्रमित होकर क्षय होता है। तो ये टर्न हो गए सम्यक प्रकृति रूप से, अभी भी उदय सम्यक प्रकृति का ही चल रहा है, परंतु ये वेदक जो है अभी इस रूप हो गया ना, अभी भी एक अंतर्मूर्त का विश्राम है, अब यहाँ कहीं भी इसके आगे कहीं भी उसका मरण हो सकता है। ये जो इसका जो अभी इसका लॉट का लॉट नीचे चलाएगा और होते होते ये सब एक छोटे अंतर्मूर्त ये सब क्षय हो जाएगा, निकल जाएगा, निर्जरा हो जाएगी उसकी। तो ये जो है उसका कार्य, एक अंतर्मूर्त अभी होता है तब तक वो वेदक सम्य दृष्टि कहता है। कौन सा वेदक, कृतकृत्य वेदक, कृतकृत्य क्षोभम सम्य दृष्टि कौन है, एक ही बात है, कृतकृत्य वेदक। इसका उदय है इसलिए वेदक कहना अच्छा है, क्षोभम में तो दूसरे दो अंदर उपशमित हो पड़े हैं, इसको वेदक क्यों कहा, इसको अभी क्षोभम कहना ठीक नहीं ना, क्योंकि मिथ्या तो और सम्यक मिथ्या तो है ही नहीं है, इसलिए इसको वेदक कहना अच्छा है। उसका उदय चल रहा है इसलिए वेदक है, तो कृतकृत्य वेदक अवस्था यानी सम्यक मिथ्यात्व जब पूरा ही सम्यक प्रकृति रूप हो गया, अब इस अवस्था से इस पॉइंट से लेकर उसको मरण आ सकता है, उसके पहले नहीं आ सकता था। अनंतानुबंधी का कर दिया, उसके पश्चात उतने काल तो मरण आ सकता था, परंतु एक बार मिथ्यात्व का संक्रमण चालू हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन क्षय चालू हो गया, उस पॉइंट से लेकर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय का कार्य पूरा नहीं होता है तब तक के जो अंतर्मूर्त है वहां तक उसका मरण नहीं होता है। अब ये इस पॉइंट पर मरकर वो कहीं भी चारों गति में जो उसने आयु बांधी है वहां जाएगा, और ये जो इसका सम्यक प्रकृति को भी निर्जरा करने का जो कार्य है वो वहां पर एक अंतर्मूर्त में समाप्त होगा, और वो पूर्ण रूप से क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा। यानी क्षायिक सम्यक्त्व का कार्य जिसको प्रस्थापना करते स्टार्ट, तो स्टार्टिंग तो मनुष्य गति में ही होगा कर्मभूमि के, और उसका जो निष्ठापन यानी पूर्णता जो है समापन है वो अन्य कोई भी गति में जाके होगा उसका, उसको कहते ये मनुष्य में ही सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक प्रकृति रूप होना ये मनुष्य में ही होगा, वो भी कर्मभूमि का मनुष्य चाहिए, और तीर्थंकर और क्षोभम सम्यक दृष्टि चाहिए, तीर्थंकर की पाद मूल में होना चाहिए।
इतना होने का भी जरूरत नहीं, वो अनंतानुबंधी के बाद भी मर सकता
है। अनंतानुबंधी के बाद मरेगा तो उसको क्षायिक सम्यक्त्व का कार्य होगा नहीं, उसके बाद मरेगा तो मिथ्यात्व में भी कहीं जा सकता है, भले मरने की भी जरूरत नहीं है। कोई कोई जीव ऐसा होता है जैसे अनंतानुबंधी का तो विसंयोजन कर दिया और इतने विशुद्ध परिणाम हुए और गिर कर मिथ्यात्व में आ गया, ऐसे भी जीव होते हैं ना। सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व में जाता है तो मिथ्यात्व का उदय चालू हो जाता है और नया अनंतानुबंधी बांधना भी चालू हो जाता है। ऐसे भी यानी परिणामों की ये जो विचित्रता बताते हैं ये ऐसे हो सकते हैं। देखो आपका ऐसा प्रश्न है कि भोग भूमि का क्षायिक है वो देवगति बांधेगा कि मनुष्य गति भी बांधेगा, देवगति के भोग भूमि के क्षायिक की तो बात ही छोड़ो, ऑर्डिनरी सम्यक दृष्टि की भी बात छोड़ो, कोई भी हो मिथ्या दृष्टि जीव, वो भी देवगति और देवायु ही बांधेगा। भोग भूमि से एक ही रास्ता है देव।
देखो वो आप गति कह रहे हैं ना, वो गलत है। आपको पूछना था कि देवायु बांधेगा क्या। हाँ मैं समझ गया, तो वो देवायु ही बांधेगा। गति चारों ही बांधे ना अपने, क्या जाते हैं हा? गति से कोई मतलब नहीं।
हाँ मनुष्य आयु बांधने की गति भी कहो कोई बात नहीं है, तो चौथे गुणस्थान में होता है। मनुष्य आयु वो नहीं बांध सकता।
अभी तो आप कह रहे हैं विच्छित्ति, और आप ही पूछ रहे हैं कि बांध सकेगा कि नहीं।
जो है वो किस अपेक्षा से कहा, चौथे गुणस्थान के तो सभी है, तो चौथे गुणस्थान वाला मनुष्य मनुष्य आयु नहीं बांध सकता। कहीं भी हो, कर्म भूमि का हो या मनुष्य का हो, उसकी जो मनुष्य आयु की आप जो आप लोग नहीं समझे सुन लेना, जो विच्छित्ति कहना ये क्या कहना चाहते हैं, मनुष्य कोई जीव है वो मनुष्य आयु का बांधना है या मनुष्य गति का जो बांधना है वो कौन से गुणस्थान तक होगा उसको बोलो। दूसरे गुणस्थान में मनुष्य के लिए मनुष्य आयु क्या बंध की विच्छित्ति दूसरे में होती, तिर्यंच जीवों के लिए भी दूसरे में होती है। यानी मनुष्य और तिर्यंच पहले और दूसरे गुणस्थान में ही मनुष्य आयु का बंध कर सके, ऐसा नियम है। उनकी विच्छित्ति वहीं पर होती है। और जो देव और नारकी है चौथे गुणस्थान वाले, वो तो मनुष्य गति मनुष्य आयु बांधेंगे। सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, मनुष्य हो भोग भूमि का हो या कर्म भूमि का हो, सम्यक तो होने के बाद अभी जो आयु बांध रहा है तो अभी तो वो देवायु बांधेगा, और भोग भूमि वाले तो देवायु बांधेंगे क्योंकि उनके शुभ लेशाएं होती है ना, तो वहां वो देवायु का बंध करते। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हाँ देखो आपका ऐसा प्रश्न है, वो तो सम्यक मिथ्यात्व का क्षय होने के पश्चात एक अंतर्मूर्ति विश्राम करता है, वहाँ भी वो कृतकृत्य वेदक है, और जो सम्यक प्रकृति का क्षय करने का कार्य भी एक अंतर्मूर्ति में होता है, यानी दो अंतर्मूर्ति में तो वो क्षायिक हो जाता है, तो वहाँ कहीं पर भी उसका मरण होता है तो रिमेनिंग कार्य अन्य भव में जाके करता है। यानी विश्राम के काल में भी मरण होगा, चलेगा वहाँ भी होगा, तो भी अभी उसका जो एक अंतर्मूर्त वाला, दोनों मिलकर भी अंतर्मूर्त है ना, उसको दो अंतर्मूर्त मत कहो, एक ही अंतर्मूर्त कह दो, तो ये एक अंतर्मूर्त में वो क्षायिक समय दृष्टि हो जाता है। तो ये हमने उसका रेफरेंस देखा था ना, देखो अभी हम अपना ओरिजिनल कहाँ है वहाँ ले लेते हैं। हाँ 538 पेज पर आए हम, क्या 568 पर आए, 538 पर आए। देखो तो ये हमने द्रव्य और भाव की लेशा देखी, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक छह सम्यक सौनी आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते, ये कृतकृत्य वेदक की बात निकली थी ना, इसलिए हम वहाँ गए थे। अब अपर, हाँ ये हम लगाएंगे, देवों के अपर्याप्त काल पर लगाए थे, हो गए थे। अच्छा अभी पढ़ना है देव अपर्याप्त, हम पढ़ेंगे इसको। देखो यहाँ क्या सभी देव लिए हैं और अपर्याप्त काल लिया है, तो पिनांग भाई जरा विचार करना, हमने कल देखा है इसको, तो गुणस्थान कौन कौन से हो गए, कहीं से मरकर देव में आने वाला जीव है, बहुत अच्छा, एक दो और चार। तो मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये तीन गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समस, अपर्याप्त लेना है, छह अपर्याप्तियां, सातों प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, कहीं भी देखो नीचे चलेगा, त्रस काय। अभी योग में देखो अपर्याप्त जीव है देव का, तो वैकृत मिश्र और कारमान, ये दो योग वेद में दो ही लिखना है अभी, स्त्री और पुरुष ये दो वेद चारों कषाय अपर्याप्त है तो विभंग ज्ञान के बिना दो कुक ज्ञान हो गए और हमने चौथा भी पकड़ा था तो तीन ज्ञान हो गए, तो विभंग ज्ञान के बिना पांच ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन। अब द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा, ये अपर्याप्त अवस्था में तो सबको होती है, और भाव से छह लेशाएं। देव अपर्याप्त क्योंकि हमने सभी देव लिए हैं, तो भवनत्रिक में अशुभ लेशा होती है भाव की अपर्याप्त अवस्था में, इसलिए उसको भाव में तो छह लिए। पर्याप्त अवस्था में हमने तीन शुभ देखी थी और देवों में अपर्याप्त अवस्थाओं में भाव से छह देखी। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक सम्यक मिथ्यात्व के बिना पांच सम्यक्त्व, ये कौन कौन से पांच? हाँ, मिथ्यात्व, सासाधन और जो चौथे वाला जो है अपर्याप्त, तो उसमें औपशमिक, शावशमिक और शायिक। सौनिक आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब हम अगला आलाप देखेंगे, मिथ्या दृष्टि देव। तो मिथ्या दृष्टि देवों के सामान्य आलाप है, इसमें पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है, दोनों को मिलकर कहना है। हाँ, कौन कहना चाहते हैं आप? हाँ, तेजुबेन बताओ आप। मिथ्या दृष्टि देव है, गुणस्थान मिथ्यात्व। हाँ देखो, दोनों है ना, तो संगी पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। पर्याप्ति हाँ, प्राण दशा, संज्ञा चारों, गति देवगति इंद्रिय में, एक पंचेंद्रिय काय में, त्रस का हाँ योग ग्यारह। अरे वाह, बोलो। मन के, वचन के चार, वैकृक का योग, वैकृक मिश्र का योग और कारमन। बहुत अच्छा, एकदम तैयारी से आए हैं। वेद दो ही वेद है, स्त्री वेद पुरुष वेद। कषाय चारों, ज्ञान तीन, अज्ञान। बहुत अच्छा, संयम हाँ, दर्शन कौन से तीन? मिथ्यात्व में हाँ दो, चक्षु दो ही। लेशा द्रव्य से, भाव से भी छे हाँ। भव्य के अभव्य, नक्की देव में है? देखो, मिथ्या दृष्टि है, देव में गया तो क्या हुआ, अभव्य भी देव में जाएगा, अनंत बार जाएगा। हाँ, पहला गुण स्थान है हमने, तो नवे ग्रहक में भी अनंत बार ये जीव जाके आए, हम कहते कि न, तो देव में गया वो तो कोई विशेषता नहीं है। तो इसलिए भव्य अभव्य, सम्यक तो कौन कौन से है? मिथ्यात्व, संगी आहारक के अनाहारक दोनों है, उपयोग भी दोनों। अभी मिथ्या दृष्टि देवों के पर्याप्त आलाप लगाना, मंदाबेन लगाना आप। हाँ, मिथ्यात्व संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्ति, प्राण दस, संज्ञा चार, गति देवगति इंद्रिय पंचेंद्रिय, त्रस काय, हाँ योग नौ, मन के वचन के और वैकृत का योग। हाँ, वेद दो, कषाय चार, ज्ञान तीन, अज्ञान संयम असंयम, दर्शन दो, लेशा द्रव्य से छह और भाव से पर्याप्त है। अभी देखो, मिथ्या दृष्टि है, पर्याप्त जीव है, तीन शुभ लेशा देवों में, तो पर्याप्त अवस्था में तीन शुभ लेशा हो गए। हाँ, भव्य के अभव्य, दोनों हाँ, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, संगी आहारक, आहारक है और उपयोग, दोनों बहुत अच्छा। अब ये मिथ्या दृष्टि देवों के अपर्याप्त, प्रेरणा बिना बताना, गुणस्थान पहला जीव समास, संगी अपर्याप्त, पर्याप्ति छह अपर्याप्ति, प्राण सात, संज्ञा चार, हाँ देवगति, पंचेंद्रिय एक, त्रस्काय दो, योग पुरुष वेद, दो ही वेद हाँ, स्त्री और पुरुष हाँ, चार कषाय, दो ज्ञान, दो कौन से, दो ज्ञान है ना अज्ञान, दो अज्ञान, संयम असंयम, दर्शन दो, लेशा हाँ, द्रव्य से दो हाँ, और भाव से नक्की करो हाँ, मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त है। देखो भवनत्रिक में तो तीन अशुभ, मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त है या सासाधन अपर्याप्त है, भवनत्रिक में तो तीन अशुभ, और जो ग्रहवेगों में जाने वाले किसकी कौन सी होगी, उसको शुक्ल लेशा होगी और बीच वालों के पद्म होगी, नीचे जो सौधर्म ईशान में जो मिथ्या दृष्टि जन्मेंगे उनके तो पीत लेशा होगी, यानी अपने अपने स्वर्ग की, इसलिए द्रव्य से दो और भाव से छः। जब हम भवनत्रिक का अलग आलाप कहेंगे और ऊपर के स्वर्गों का अलग कहेंगे तो वहाँ हम जो अपनी अपनी जो शुभ लेशा वो कहेंगे, ख्याल है ना, भव्य अभव्य दोनों, सम्यक तो कौन सा है, मिथ्यात्व है, संगी आहारक अनारक दोनों, उपयोग दो। अब ये जो मिथ्या दृष्टि देवों के हमने आलाप देखे थे, ये मिथ्या दृष्टि देव कौन से स्वर्ग तक हो गए, हाँ नैवेग्रवेग तक, ऊपर के देवों का अगर आलाप कहना है कितने गुणस्थान होते हैं उनमें, एकमात्र चौथा गुणस्थान है ना, हम इसको पढ़ेंगे फिर अगला हम आलाप देखेंगे। 539 पृष्ठ पर आए हम, वहां से पढ़ेंगे हाँ। देखो आपका ऐसा कहना है वैकृत के जो परमाणु है स्कंद जो है उससे शुक्ल लेशा ही बनेगी, शुभ लेशा तो भावों की होती है, वैकृत परमाणु है वो तो द्रव्य में चले जाएंगे, द्रव्य की लेशा है ना वो, जो स्वर्गों की जो है ना वो अपने अपने स्वर्गों के ऊपर, और भवनत्रिक में तो छह है द्रव्य की लेशा, अभी हमने कल पढ़ा था ना उसमें, और द्रव्य लेशा से भाव लेशा का कोई संबंध नहीं है। हाँ नरक में भी वैकृत ही है। देखो भैया मिथ्या दृष्टि देवों के सामान्य आलाप कहने पर 539 पृष्ठ पर, एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास, छह पर्याप्तिया छह अपर्याप्तिया, दशो प्राण सात प्राण, चारों संज्ञाएं देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, वैकृत का योग, वैकृत मिश्र का योग और कारमाण का योग, ये ग्यारह योग, नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु अचक्षु ये दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाय, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, सौनिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं, ये 20 प्रारपणा लगाना तो हमारे में और देवों में क्या विशेषता है, तो हम तो क्या सोचते हैं, हाँ 14 गुण नहीं, हम उनसे भले ना क्या, अभी अभी पंचम काल की बात करो, अभी तो सातवां गुणस्थान भी प्राप्त हो सकेगा और उनके तो चौथे तक ही लटकेंगे वो, हमें तो वो तो देवगति अच्छी लगती है, क्यों बाह्य संयोग की तरफ देखते हैं, वही वही भी अज्ञान है, वही भी असंयम है, क्या है? ये सब प्ररूपणा देखो तो कोई फर्क नहीं है खास, तो सब तो देवगति में जाना चाहते हैं, उल्टा तो मनुष्य अच्छा है, क्यों पुरुषार्थ करे और अधिक ऊपर के गुणस्थानों में चला जाए, मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है मनुष्य।
ये कल समय सार में बात आई थी, आ मोह रूपी भूतड़ू बड़द नी जेम भार बेवड़ावे छे। ये मोही जीव है, उसको ये पंचेंद्रिय के विषयों में इतनी आसक्ति है कि वो अनुकूल संयोग मिलने के लिए, अरे वहां तो सारा अनुकूल ही है, प्रतिकूल तो मिलेगा ही नहीं, तो चलो वहां चले, ऐसी ये वृत्ति होती है। यानी यहाँ तो समझा रहे हैं कि भाई पांचों इंद्रियों के माध्यम से तुझे सुख मिल ही नहीं रहा है, हाँ, और तू मोहित होके उसमें अटका हुआ है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि वहां तो चार ही गुणस्थान है और अपने यहाँ मनुष्य पर्याय में 14 भी गुणस्थान प्राप्त हो सकते हैं, सिद्धत्व भी प्राप्त होगा, लेकिन हमें तो बाह्य वस्तुओं में ही विशेष इंटरेस्ट है ना।
और ये वहाँ लिखा ना समय समय तृष्णा रूपी दाह से जल रहा है अंदर से। अब ये विषयों को भोगने रूप जो तृष्णा है, इच्छा जो है, वो इच्छा का दुख है, वो दुख तो दिखता नहीं है और वो भोगने का सुख होगा ऐसे हम कल्पना कर लेते हैं। चलो अभी हम यहाँ मिथ्या दृष्टि देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक काल संबंधी आया यहाँ अपर्याप्त काल संबंधी, ठीक है, पर्याप्त काल में कौन से हो गए, एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और वैकृत काय योग, ये नौ योग। नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन। द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से तेज, पद्म और शुक्ल लेशाएं, ये पर्याप्त है ना अभी, इसलिए शुभ तीन लेशा ले। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी उन्हीं मिथ्या दृष्टि देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तिया, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, वैकृत मिश्र का योग, कारमाण का योग, ये दो योग। नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषायें, कुमति और कुश्रुत, ये दो अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन। द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं और भाव से छह लेशा, देखो भाव से छह लेशा होगी, मिथ्यात्व है, देव है, सामान्य से सभी देव लिए हमने। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब सासाधन सम्यक दृष्टि देवों के सामान्य आलाप कहने पर अश्विन भाई आप बताएंगे। हाँ, दूसरा गुणस्थान, हाँ, संगी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, छह पर्याप्ति, छह अपर्याप्तिया, दस और सात प्राण, चारों संज्ञा, देवगति, एक पंचेंद्रिय, त्रस काय, हाँ, योग ग्यारह, क्योंकि हमने सामान्य देखा ना पर्याप्तों के और अपर्याप्तों के मिलकर ग्यारह, दो वेद, चार कषाय, सासाधन वाला है ना, ज्ञान कौन से हो गए, तीन कूद ज्ञान, हाँ, संयम, असंयम, दर्शन दो, हाँ, लेशा, द्रव्य से छे और भाव से भी छे, हाँ, भव्य, अभी भव्य लेना, हाँ, सम्यक्त्व, सासाधन, संगी, आहारक अनाहारक दोनों और उपयोग भी दोनों। अब डॉक्टर आप बताना, पर्याप्त सासाधन सम्यक दृष्टि देव, पर्याप्त क्या लाभ, दूसरा गुणस्थान, हाँ, संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्ति, दस प्राण, चार संज्ञा, देवगति, पंचेंद्रिय, त्रस काय, नव योग, हाँ, स्त्री और पुरुष दो वेद, कषाय चार, हाँ, पर्याप्त आलाप चल रहा है, तीन अज्ञान, संयम, असंयम, दर्शन दो, लेशा, पर्याप्त में द्रव्य से कितनी लेशा होगी? छह होगी। और भाव से देवों में हमने देखा, हाँ तीन शुभ लेशा पर्याप्त जीव में। भव्य भव्य है, सम्यक्त्व सासादन, संगी हाँ, आहारक दोनों उपयोग। अब यही सासादन सम्यक् दृष्टि में अपर्याप्त का आलाप लगाना है, मयंग में आप लगाना। दूसरा गुणस्थान संगी अपर्याप्त, पर्याप्ति छः अपर्याप्ति, प्राण सात, संज्ञा चार, देवगति एक, पंचेंद्रिय त्रस्काय, हाँ योग दो, कौन से? हाँ वैकृत मिश्र और कारमान, वेद वे भी दो, स्त्री और पुरुष, हाँ चार कषाय, दो कुज्ञान, बराबर अपर्याप्त अवस्था है तो दो कुज्ञान, असंयम, दो दर्शन, द्रव्य की दो, हाँ छह होगी। देखो क्या है, कोई मनुष्य समय सासादन में मरकर देव में उत्पन्न हुआ, कौन से सौधर्म है या ऊपर के, तो उसमें तो वो शुभ लेशा होगी, अपनी अपनी वो स्वर्ग की लेशा होगी, इसलिए उसके लिए छह लिए। भव्य के अभव्य, भव्य सम्यक्त्व सासादन, संगी हाँ, आहारक दोनों हाँ, उपयोग दोनों। अब इसको हम पढ़ेंगे, हो गया ना सासादन, सम्यक मिथ्यात्व लेना है। अच्छा पिनांग भाई आप सम्यक मिथ्यात्व देवों का, उसमें क्या होगा, पर्याप्त हो गया कि अपर्याप्त? हाँ पर्याप्त ही है, क्योंकि उसमें तो अपर्याप्त आलाप होता ही नहीं है। तो गुणस्थान त्रिजु, हाँ संगी पर्याप्त, छह पर्याप्ति, दस प्राण, चारों संज्ञा, देवगति एक, पंचेंद्रिय हाँ, त्रस्काय योग नौ, बहुत अच्छा, वेद बे कषाय चार, ज्ञान तीसरा गुणस्थान है ना, हाँ मिक्सर वर्ड तीन मिश्र, बहुत अच्छा, संयम। देखो तीन लिखा, अज्ञान और ज्ञान मिश्र, तीन अज्ञान और तीन ज्ञान इनका मिश्र, तीन अज्ञान प्लस तीन ज्ञान, ऐसे तीन मिश्र कहेंगे हम। संयम और संयम हाँ, दर्शन हाँ दो, लेशा पर्याप्त है ना, पर्याप्त जीव में द्रव्य की छे और भाव की छे, कैसे बहुनत्रिक में तीन अशुभ कैसे होगी? सम्यक मिथ्यात्व में अपर्याप्त अवस्था है, बहुनत्रिक के पर्याप्तों को एक पित लेशा ही होती है, हाँ तो तीन शुभ ही होगी। भव्य के एक ख्याल में आया, देखो देवों के किसी भी पर्याप्त अवस्था में हो, कोई भी गुणस्थान हो तो उसकी शुभ लेशा होगी, हाँ किसी भी बहुनत्रिक भी क्यों ना हो तो उसकी तो पर्याप्त अवस्था में शुभ लेशा ही होती है। अपर्याप्त में हम भाव से छह कहते हैं, क्योंकि भवनत्रिक के अपर्याप्त में तीन अशुभ होती है, ऊपर अन्य कहीं भी अपर्याप्त में अशुभ नहीं होती है। देखो ये नए लोगों को विचार करने दो, विचार करने दो, ये क्या है, ये नवे लोग जरा सोचे, सोच कर इसका आंसर आना चाहिए। हाँ भव्य के अभव्य, भव्य सम्यक तो कौन सा है? सम्यक मिथ्या, बहुत अच्छा। संगी, आहारक के अनारक, आहारक और उपयोग दोनों। देखो देखो, आपको ज्ञान में नहीं समझा, मिथ्यात्व में हमने देखा था तीन अज्ञान, मिथ्यात्व में तीन अज्ञान, सासाधन में तीन अज्ञान। अब ये जो तीसरे गुणस्थान वाला जो मिश्र परिणामी है, सम्यक मिथ्यात्व वाला, तो उसके ज्ञान और अज्ञान का मिश्र ऐसा परिणाम होता है। जैसे वहाँ भावों में मिश्र परिणाम है, वैसे ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का, जैसे मति ज्ञान और कुमति ज्ञान का मिला हुआ मिश्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान का मिला हुआ ऐसे मिश्र ज्ञान, यानी मिश्र श्रुत ज्ञान, और विभंग ज्ञान और अवधि ज्ञान उसका मिला हुआ ऐसा मिश्र अवधि, इस तरह से तीन मिश्र ज्ञान कहेंगे। सब पूरा पूरा पढ़ना, तीन अज्ञान तीन ज्ञान मिश्र, बीच में प्लस साइन लिख दो, तीन अज्ञान प्लस तीन ज्ञान इज इक्वल टू तीन मिश्र, ख्याल है ना? यानी छह ज्ञान नहीं लेना, वहां नहीं लेना, तीन मिश्र ज्ञान लेना।
देखो आपको याद होगा डॉक्टर साहब, हाँ हा? जी हाँ,
अकेले तीन अज्ञान नहीं लेना,
हाँ वो तीन,
हाँ को अवधि,
और जो सम्यक तीसरे गुणस्थान में कौन आएगा, मान लीजिए कि जो चौथे से आएगा तो उसके तीन सु ज्ञान होंगे क्योंकि देव है ना, लेकिन उसका वहां से गिरता है वो, तो वो अभी क्या हो गया कि उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। अभी उसके लिए क्या होगा कि ना सम्यक्त्व के भाव है और ना मिथ्यात्व के भाव है, बीच वाले जात्यंतर परिणाम का है। जैसे दही खट्टा होता है, गुड़ मीठा होता है, दोनों को एकत्रित करेगा तो एक तीसरा ही कोई परिणाम, मतलब उसका स्वाद होता है। इसी तरह यह ज्ञान का और अज्ञान का मिश्रित ऐसा जो कुछ परिणाम होगा उसको मिश्र अज्ञान कहने में आता है।
अभी हम ये सभी आलाप पढ़ेंगे, आपका प्रश्न है कोई? हाँ देखो 540 पृष्ठ पर, सासाधन सम्यक दृष्टि देवों के सामान्य आलाप कहने पर, एक सासाधन गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास मिला, छहो पर्याप्तिया छहो अपर्याप्तिया, दशो प्राण सात प्राण, चारों संज्ञाए, देवगति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय, चारों मनोयोग चारों वचन योग, अवधा वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये 11 योग सामान्य कह रहे हम सभी सासाधन वाले, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों। नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषायें, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक, सासाधन सम्यक्त्व, सौनिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं, ये तो सासाधन वाले का सामान्य आलाप हुआ। उन्हीं सासाधन सम्यक दृष्टि देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, अभी पर्याप्त कौन के आलाप कहेंगे, एक सासाधन गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और अवैक्रेक का योग, ये नौ योग। नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषाएं, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन। देखो ये पर्याप्त है ना, इसलिए तीन अज्ञान लिया था डॉक्टर। हाँ, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं, पर्याप्त जीव है तो भाव से तीन शुभ लेना। भव्य सिद्धिक, सासाधन सम्यक्त्व, सौंदिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी इसके आगे वाला अपर्याप्त वाला आलाप, उन्हीं सासाधन सम्यक दृष्टि देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, यानी कहीं से मरकर वो देव में आया है सासाधन गुणस्थान के साथ, ऐसा जीव है ना अपर्याप्त में, तो एक सासाधन गुणस्थान, संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तिया, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, वैक्रेक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये दो योग। नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये दो अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से छह लेशाएं, अपर्याप्त में भाव से छो ली। भव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक सौनिक आहारक अनाहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब तीसरे गुणस्थान की बात जो हमने देखी थी, कहाँ पर कौन सा नंबर, टेबल नंबर, अभी तीसरा पढ़ा नहीं हमने। कहाँ की बात कर रहे हैं, असम बराबर है, वहाँ भी बराबर है आप, हाँ हाँ इसमें है, ठीक है। हाँ अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको देखो, सम्यक मिथ्या दृष्टि देवों के आलाप कहने पर, यह हमने पहले देखा था, अभी इसको पढ़ेंगे। एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और वैक्रेक का योग, ये नौ योग। नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञानों से मिश्रित आदि के तीन ज्ञान। अभी समझ में आए डॉक्टर, तीन अज्ञानों से मिश्रित आदि के तीन ज्ञान, यानी तीन, उसकी संख्या तीन कहना, छह नहीं कहना। असंयम, चक्षु और अचक्षु ये दो दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशा, ये पर्याप्त जीव है इसलिए भाव से तीन शुभ लिए। भव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व, सौनिक आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब असंयत सम्यक दृष्टि देवों के सामान्य आलाप कहने पर, हाँ आपका प्रश्न है, पर्याप्त होगा देव पर्याप्त, भले वो मिथ्या तो गुणस्थान में हो, सासाधन में हो, तीसरे में हो या चौथे में हो, उसकी वो शुभ लेशा ही होगी, और वो भी अपने अपने स्वर्ग की जो जो लेशा होती है ना, नीचे के उसमें पीत होती, बीच वालों के पद्म है, ऊपर के शुक्ल है, तो भले वो मिथ्या दृष्टि है उसकी लेशा तो शुक्ल लेशा या जो कुछ है वो शुभ लेशा रहेंगे। हाँ वो बात आएगी, अभी हम उनके आलाप अलग अलग देखेंगे। जैसे नरकों में जो हमने देखे थे, ऊपर के नरकों में कपोत और बीच बीच पे फिर नील, फिर नीचे कृष्ण होती है, वैसे स्वर्गों में नीचे पीत है, बीच वालों में पद्म और ऊपर शुक्ल हो जाते हैं। अभी असंयत सम्यक दृष्टि देवों के सामान्य आलाप, हाँ आप बोलो सामान्य आलाप, हाँ चौथा गुणस्थान, संगी पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्ति पहले पर्याप्ति, छः पर्याप्त, छः अपर्याप्त, दस और सात प्राण, चार संज्ञा, देवगति, एक पंचेंद्रिय, त्रस्काय, हाँ ग्यारह, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिलकर ग्यारह, वेद दोनों, चार कषाय, ज्ञान तीन सम्यक ज्ञान, असंयम तीन दर्शन, हाँ द्रव्य की छह लेशाएं और भाव की तीन शुभ लेशाएं, भव्य तीनों सम्यक्त्व, संगी आहार अनाहारक दोनों उपयोग दो। प्रेरणा बेन अभी आप पर्याप्त, आप ही कहो, एक एक मिनट, हाँ इनका प्रश्न ऐसा है कि कहाँ तक दो वेद लेना देवों में, हाँ बोलो देवेंद्र भाई बता, जरा इनको हेल्प करना, जरा जरा सुनो सुनो, हाँ हाँ बोलो, सामान्य की अपेक्षा कहाँ तक उसके दो वेद हो गए। देखो आप देखो, गुणस्थानों की अपेक्षा लेंगे तो चारों ही गुणस्थानों में दोनों वेद हैं। हाँ हाँ अभी आप बोलो कौन से स्वर्ग तक, अभी 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 स्वर्गों की अपेक्षा बताओ, हाँ और ऊपर ऊपर कौन से वेद होते हैं इसका, बीच वालों का बताओ,
बीच वालों में दोनों देव देविया दोनों होते हैं,
उनको हम वो स्वर्ग की देवी नहीं कहेंगे,
स्वर्ग की देवी नहीं कहेंगे,
तो वेद कौन से पाए जाएंगे? आप गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो। हाँ। देखो देखो ये जो ऐसा है, सौधर्म और ईशान तक दोनों है, तो वहाँ दोनों वेद हो गए, और अभी सानत कुमार महेंद्र से ऊपर एकमात्र पुरुष वेद होगा। देवांगना ले जाएगी तो भी वो वहाँ की देवियाँ नहीं कही, तो ये गड़बड़ गड़बड़ कर रहे ना, क्या कहना है? पहले और दूसरे स्वर्ग और भवनत्रिक, इनमें पुरुष भी है और स्त्रियाँ भी है, बराबर। सनत कुमार महेंद्र से आगे एकमात्र पुरुष वेद है, अब वो देवियाँ ले जाते कि नहीं जाते उसकी चर्चा ही नहीं करना। हाँ आपका ऐसा प्रश्न है कि जो देव आके देवियों के देवियों को ले जाते हैं, जैसे ये अमेरिकन आके ले जाते हैं, तो क्या इंडिया में आना जरूरी है मरने के लिए उनको? नहीं, आपका प्रश्न सही है, मरण कहीं भी हो सकता है। ऐसा भी होता है वो कोई देव गया है नारकी में उसको संबोधन करने के लिए और वहीं पर मर जावे, ऐसे भी कोई देव हो गए ना कि जो नरक में मरते हैं, क्यों? हाँ अभी ख्याल में आया। हाँ अभी आप कौन कौन कह रहे थे? आप पर्याप्त कह रहे थे क्या?
हाँ सामान्य हो गया, पर्याप्त बाकी है।
सामान्य कह दिया आपने। हाँ अभी पर्याप्तों की कहो आप। हाँ चौथा गुण स्थान संगी पर्याप्त, छह पर्याप्ति, दस प्राण, चार संज्ञा, देवगति, इंद्रिय पंचेंद्रिय, त्रस्काय, नौ योग, दो वेद, चार कषाय, तीन ज्ञान, संयम असंयम, हाँ दर्शन तीन, हाँ द्रव्य की छह और भाव की तीन शुभ, हाँ भव्य सम्यक्त्व तीनों, हाँ बराबर। संगी संगी आहार, हाँ दो उपयोग। अब अपर्याप्त लगाना है, असंयत सम्यक दृष्टि अपर्याप्त आलाप। हाँ मयंक भाई आप कहना, चौथा गुणस्थान संगी अपर्याप्त, छह अपर्याप्ति, सात प्राण, चार संज्ञा, देवगति, पंचेंद्रिय इंद्रिय, हाँ त्रस्काय, दो योग, कौन से दो? असंयत, हाँ असंयत अपर्याप्त है, एक पुरुष वेद, एक पुरुष वेद, बहुत अच्छा। कषाय चार, ज्ञान हाँ तीन सौ ज्ञान, संयम हाँ दर्शन तीन दर्शन, लेशा द्रव्य की दो और भाव की, तीन शुभ। अभी सम्यक दृष्टि है तो वो भवनत्रिक में नहीं जाएगा, भवनत्रिक के अपर्याप्त काल में तीन अशुभ हो सकती है, और सम्यक दृष्टि भवनत्रिक में नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा तो उसकी शुभ लेशा ही होगी, और जहां पर जाएगा वैसी वैसी उसकी लेशा होगी। हाँ भव्य सम्यक्त्व तीनों हो सकते हैं, औपशमिक वाला कौन सा होगा? प्रथम ऑप्शन होगा कि द्वितीय? द्वितीय ऑप्शन, हाँ अपर्याप्त है ना। हाँ संगी, हाँ आहारक अनारक दोनों है और उपयोग, बहुत अच्छा। अभी हम इसको पढ़ेंगे, ख्याल है ना? हाँ 543 प्रेश पर पिनांग ख्याल में आता है ना?
हाँ जो है उसमें दो दर्शन कभी आएगा?
देखो जब हम विभंग ज्ञान लेते हैं तो विभंग ज्ञान के साथ दो ही दर्शन लेना, तीन अज्ञान लिए ना, परंतु दर्शन दो लेना, यानी पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थान में दो दर्शन लेना। ऊपर के गुणस्थानों में जहाँ अवधि ज्ञान हम लेते हैं, सम्यक अवधि ज्ञान यानी मतिशुद्ध अवधि ज्ञान, तो उसके साथ अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन को भी लेना, यानी तीन दर्शन कहना। परंतु जहाँ मिथ्या ज्ञान की बात चल रही है वहाँ दो ही दर्शन लेना, अवधि दर्शन नहीं लेना वहाँ। अब असंयत सम्य दृष्टि देवों के सामान्य आलाप कहने पर 543 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे 543। एक अविरत सम्य दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास कॉमन है ना। छह पर्याप्तिया छह अपर्याप्तिया, दशो प्राण सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग और कारमाण का योग, ये 11 योग। नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषायें आदि के तीन ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं और भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं। अभी यहाँ तीन ही ली चौथा गुणस्थान में, भले पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, तीन शुभ लेशाएं हैं। भव्य सिद्धिक औषमिक शायिक और क्षावषमिक, ये तीन सम्यक्व, सौनिक आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब यहाँ असंयत सम्यक दृष्टि देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, इसमें एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, वैकरिक काय योग, ये नव योग। नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषायें आदि के तीन ज्ञान, असंयम, वो नीचे टेबल में अस हुआ है, वो स के ऊपर बिंदी देना, 151 वाला जो है ना उसमें असम, आदि के तीन दर्शन। अब ये तीन दर्शन क्यों लिया पता चला? हाँ पिनांग भाई, पूछना फिर। हाँ देखो, अभी हम चौथे गुणस्थान की बात चल रही है अपने, तो अभी तो हम पर्याप्त वाला आलाप पढ़ रहे हैं। अपर्याप्त आलाप में क्या विशेषता क्या होगी, चौथे वाले के अपर्याप्त कहना है ना अभी, तो उसमें आप क्या जानना चाहते हैं? लेशा के ज्ञान दर्शन, दर्शन जानने हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको तीन ज्ञान है। अब जब हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं तो अपर्याप्त अवस्था में उसको विभंग ज्ञान नहीं होता, मिथ्या दृष्टि पर्याप्त होने के बाद उसको विभंग ज्ञान होता है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था का दो कुक ज्ञान कहेंगे मिथ्यात्व वाले। और सम्यक दृष्टि है वो अपर्याप्त भी हो या पर्याप्त भी हो उसको तीन ज्ञान कहेंगे, सुख ज्ञान की बात चल। और जब तीन ज्ञान कहते हैं तो तीन दर्शन भी हो जाएंगे उसके, इसलिए चौथे गुणस्थान वाले अपर्याप्त अवस्था में तीन दर्शन होते हैं और मिथ्यात्व जो है उसके अपर्याप्त अवस्था में दो ही दर्शन हो गए। मिथ्या दृष्टि पर्याप्त होने पर ज्ञान तो तीन होते हैं पर दर्शन दो ही रहते हैं, ख्याल है ना, यानी विभंग ज्ञान हो भी जाएगा तो दर्शन तो उसके दो ही रहते हैं। थोड़ा कुछ समझा? ज्यादा क्लियर नहीं हो कोई बात नहीं, ये बार बार ये बातें आएगी तो क्लियर हो जाएगा। देखो आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं, भव्य सिद्धिक। अब सम्यक तो कौन कौन से है? औषमिक, क्षायिक और क्षावषमिक। तो मेरा ऐसा प्रश्न है, ये औषमिक वाला जो है यहाँ पर वो द्वितीय उपशम वाला होगा कि प्रथम उपशम वाला? हाँ मंदाबे, प्रथम उपशम वाला, पर्याप्त जीवों की बात चल रही है ना, पर्याप्त जीवों में द्वितीय उपशम सम्यक तो देवों में नहीं पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा? मनुष्यों में। सौनिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी अपर्याप्तों का आलाप जरा ध्यान से सुनना, पहले हमने देखा है इसको फिर देखते। देखो, उन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, एक अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव, जीव समास में वो तो अपर्याप्त आएगा है ना, फिर प्राण में डिफरेंस होगा, तो छह अपर्याप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय। अभी योग में भी डिफरेंस है, तो वैक्रेक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये दो योग। अब वेद में खास ध्यान रखना है, असंयत सम्यक दृष्टि है, अपर्याप्त काल है, इसका अर्थ क्या है, कहीं से वो सम्यक्त्व के साथ मरकर आया है तभी वो स्त्री में जन्म नहीं लेगा, तो पुरुष वेद है। कहां यानी ये अपर्याप्त संबंधी कहां कहां कौन सी बातें ध्यान रखना है, योग वाली कुछ बातें है या जीव समास वाली है या वेद वाली है, ये खास ख्याल रखने की बातें हैं। चारों कषायें आदि के तीन ज्ञान, अभी सम्य दृष्टि है इसलिए वो अपर्याप्त अवस्था में भी उसको अवधि ज्ञान रहता है। असंयम आदि के तीन दर्शन, देखो तीनों दर्शन लिए, तीन ज्ञान लिए ना तो तीन दर्शन, जब तीन अज्ञान लेंगे हम तो दो दर्शन होते हैं। द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा और भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशा, अपर्याप्त अवस्था है फिर भी तीनों ही शुभ लेशाएं हैं, क्योंकि ऊपर के स्वर्गों में ही ये जन्मता है, भवनत्रिक में नहीं जन्मता। भवनत्रिक में जन्म लेने वाले जीव ही तीन अशुभ लेशा वाले हो गए अपर्याप्त काल में, पर्याप्त होने पर वो भी पीत लेशा वाले होते हैं। तो भवनत्रिक में कौन कौन से गुणस्थान हो गए अपर्याप्त काल में, दो हो गए ना, पहला और दूसरा। मैंने पूछा भवनत्रिक में अपर्याप्त काल में कौन से गुणस्थान हो गए, पहला और दूसरा दोनों हो गए, चौथा नहीं हो सकता, तीसरा तो किसी के नहीं होते है ना। शासादन में मरकर कोई भवनत्रिक में जन्म ले सकता है, देखो इन्हें कैसी पोजीशन है। शासादन में कौन सा जाता है, औपशमिक सम्य दृष्टि, यानी मरण के काल में उसने एक अंतर्मूर्त रहता है औपशमिक, तो मरने के उस काल में उस अंतर्मूर्त ने उसने औपशमिक सम्य दर्शन प्राप्त किया किसी ने, वहां अनंतानुबंधी कषाय का उदय आया तो गिरकर शासादन में गया है ना, और वहां मरकर जहां कौन सी वो आयु बांधी हो वहां चला जाएगा, तो भवनत्रिक में भी चला जाएगा, क्योंकि शंका है कुछ। उपशम काल में, प्रथम उपशम काल कहेंगे नहीं अभी, अब वो गिर गया नहीं, वो उसका शासादन हुआ, अब उसको प्रथम उपशम नहीं कहेंगे, प्रथम उपशम तो प्राप्त किया था। उपशम काल के अंतर्मूर्त में से जब एक समय या छह अवली तक का काल बाकी है तब उसका अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो अभी उसको नो मोर प्रथम उपशम, अभी वो शासादन है वहां उसका मरण हो सकता है। मिनिमम एक समय, मैक्सिमम छह अवली, यानी मैक्सिमम अंतर्मूर्त वाला काल, यानी वो एक समय वाला मरकर आते आते वो तो कोई आएगा शासन में तो मिथ्या तो हो ही जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ा ही है कब के अरे उनको तो समय का पता नहीं है, ये इतने कहते सेकंड का इतने अब्जो भाग कर दो उससे, वो नासा वाले वो जो है ना दूरबीन लगाते हैं और वो प्लैनेट्स का वो स्पीड देखते हैं, तो 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 15 अब्जो कहो या इतने अब्जो कहो, वो अब्जो का है वो तो संख्यात है, तो यहाँ तो असंख्यात वा भाग है। तीन दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा, भाव से ये लेशा की बात हो गई, भव्य सिद्धिक औपशमिक शायिक शायोपशमिक, ये तीन सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का प्रश्न पूछा था ना, हाँ। सौनिक आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब यहाँ तो हमने सामान्य देव देखे, अब अलग अलग देवों के हम डिविजन्स करेंगे। भवनत्रिक को अलग कहेंगे, सौधर्म ईशान को अलग कहेंगे, आगे वालों को अलग कहेंगे। तो भवनवासी के सामान्य आलाप यानी पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी, बताओ आप गुणस्थान कितने हो गए? 1 से 4 गुणस्थान। संगी पर्याप्त और अपर्याप्त है। पर्याप्ति 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्ति। प्राण 10, 7। संज्ञा 4। गति देवगति। इंद्रिय पंचेंद्रिय। त्रस काय 11। योग दोनों वेद यानी स्त्री और पुरुष दोनों। हाँ कषाय 4। और वहाँ समय दृष्टि नहीं होगा कोई? आपको जब प्राप्त नहीं कर सकता क्या? आपने पहले 4 गुणस्थान बताए थे, सामान्य हो या पर्याप्त हो। सामान्य है इसलिए वो बदला नहीं है। 4 गुणस्थान हमने देखा था। हाँ तो 6 ज्ञान। हाँ संयम दर्शन अभी 3 है ना, जो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से 3 दर्शन है, तो जो मैक्सिमम नंबर है वो उसको हमको कहना है, इसलिए 3 दर्शन। लेशा हाँ, अपर्याप्त काल में 3 अशुभ और पर्याप्त वाले की 1 पीत लेशा होती है, इसलिए 4 ही होगी। हाँ भाव से 4। भव्य के अभव्य सम्यक्त्व कौन से 3? 5 शायिक नहीं होगा। द्वितीय ऑप्शन होगा क्या? यानी प्रथम ऑप्शन वहां जाके जो प्राप्त करता है उसको तो प्रथम ऑप्शन होगा, है ना। शायिक यहाँ प्राप्त नहीं कोई कर सकता और शायिक वाला मरकर इसमें उत्पन्न नहीं हो सकता, ये ख्याल में लेना। संगी आहारक आहारक अनारक दोनों और उपयोग दोनों। अभी इसको अश्विन में अपर्याप्त पर लगाना, भवनत्रिक में अपर्याप्त लेना। हाँ पहला और दूसरा गुणस्थान संगी अपर्याप्त, 6 अपर्याप्ति, 7 प्राण, 4 संज्ञा, देवगति, हाँ 1 पंचेंद्रिय, त्रस काय, हाँ 2 योग, वेद दोनों, हाँ 4 कषाय, हाँ 2 कुज्ञान, असंयम 2 दर्शन, हाँ लेशा कितनी होगी? द्रव्य की 2, हाँ 3 अशुभ। अपर्याप्त चल रहा है ना भवनत्रिक में, अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ। भव्य अभव्य दोनों है, मिथ्यात्व और साथ संगी है, आहारक अनारक दोनों और उपयोग दोनों। अब पर्याप्त का हाँ लगाने, हाँ बोलो पर्याप्त का, भवनत्रिक वाले पर्याप्त। गुणस्थान अच्छा कौन कौन लगाना चाहते हैं? पिनाक भाई लगाएंगे?
अरे मेरे को ये भवनत्रिक में हाँ एक और दो ही गुणस्थान ये समझ में नहीं।
देखो देखो हमने देखा था सम्यक दृष्टि मरकर भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होता, तो अपर्याप्त अवस्था में हमने 2 गुणस्थान बताए। वही जीव पर्याप्त होने पर वहां जाने के बाद मिथ्यात्व और सासाधन में गया है तो वहां पर कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो बाद में तो उसको 4 गुणस्थान होते से, है ना। अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन के साथ मरकर नहीं जाएगा कोई वहां, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में 4था नहीं है और 3रा तो होता ही नहीं है।
हाँ
जैसे स्त्री नहीं होता, स्त्री वेद नहीं होता 4थे के अपर्याप्त काल में, वैसे 4थे के अपर्याप्त काल में वो भवनवासी वाला भी नहीं होगा, है ना। तो सौधर्म ईशान वाले के अपर्याप्त काल में हम सम्यक को 4था गुणस्थान गिनाएंगे, भवनत्री के अपर्याप्त अवस्था में हम सम्यक दर्शन वाला 4था गुणस्थान नहीं, जैसे हमने नीचे के नरकों में नहीं गिनाया था। दूसरे नरक 3रे से 4थे यानी 7वें तक के नरकों में अपर्याप्त अवस्था में हमने पहला और अकेला पहला गुणस्थान गिनाया था। नरक में साधन भी नहीं होता है और नीचे के नरकों में समय दृष्टि भी नहीं जाता है, तो एकमात्र मिथ्या तो गुणस्थान में चला जाता है ना। अब भवनत्रिक के साधन वाला तो जा सकता है, यानी पहला भी होगा और दूसरा भी होगा। क्या नहीं समझा फिर पूछना, कंफ्यूजन कुछ मन में रखना नहीं, ख्याल है ना।
चौथा वाला क्यों नहीं था वो ही समझ में,
हाँ, क्योंकि भवनत्रिक में जन्मता ही नहीं, ये नियम है। जैसे देवियों में जन्मता नहीं वैसे भवनत्रिक में भी जन्मता नहीं। अब मैं देवांगनाओं का अगर आलाप पूछूं आपको, नहीं वो देखेंगे पता नहीं है। तो देवांगनाओं के आलाप में तो देवांगनाओं का तो हाँ, उसमें वेद कौन सा लेना, हाँ स्त्री वेद। देवों में तो जो स्त्री है द्रव्य से हो तो वो देवांगना है, तो उसको स्त्री वेद। भाव वेद और द्रव्य समान होता है उनके, और कहाँ फर्क होगा। अब उनके देवांगनाओं में आप बताना पीना, अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व कौन कौन से हो गए। अरे सम्यक्त्व मार्गणा में क्या लिखेंगे आप, हाँ सम्यक्त्व मार्गणा में हम छह भेद करते हैं, इन्होंने लिखा जीरो लिख देना, हाँ आप क्या लिखेंगे। अच्छा वैसा छोड़ दो, गुणस्थान कौन कौन से हो गए, देवांगना अपर्याप्त अवस्था कौन कौन से गुणस्थान हो गए। अभी हमने भवनत्रिक में क्या देखा, हाँ तो वैसे देवांगनाओं में अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से गुणस्थान हो गए, वही रूल यहाँ लगाना है, पहला और दूसरा। देवांगना है तो अपर्याप्त अवस्था में कोई सम्यक दृष्टि होगी नहीं होगी, वहां की देवी जाने यानी वहां जन्म लेने के पश्चात पर्याप्त होने के पश्चात सम्यक दृष्टि हो सकती है, वहां तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगी, परंतु कोई सम्यक दर्शन के साथ देवी नहीं होगी, ख्याल है ना, इसको कहते अपर्याप्त काल में। अब हम भवनत्रिक की बात देख रहे हैं, कौन लगा रहा था भवनत्रिक के, आप लगा रहे, हाँ गुणस्थान पर्याप्त लगा रहे क्या, अच्छा अपर्याप्त हो गया, नहीं नहीं अपर्याप्त उन्होंने लगाया था, हाँ वो आसान है लगा लो, हाँ जीव समास संगी पर्याप्त पर्याप्ति छह पर्याप्ति, प्राण 10 प्राण, संज्ञा 4 संज्ञा, देवगति हाँ, पंचेंद्रिय काय त्रस काय योग 9, और वेद दोनों स्त्री और पुरुष कषाय 4, ज्ञान 3 अज्ञान और 3 ज्ञान ऐसे 6, संयम असंयम दर्शन 3, लेशा द्रव्य की 6, भाव की 1, तेजोलेशा, बहुत अच्छा, हाँ भवनत्रिक में पर्याप्त अवस्था में 1 तेजोलेशा है, हाँ भव्य की अभव्य 2, सम्यक्त्व शायिक छोड़कर 5, संगी आहारक और उपयोग 2। देखो अभी इसको हम पढ़ते हैं, देखो भवनवासी वान व्यंतर और ज्योतिष देवों के सामान्य आलाप कहने पर 545 पृष्ठ पर आदि के 4 गुणस्थान संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 पर्याप्तिया 6 अपर्याप्तिया, 10 प्राण 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस का है, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, वैक्रेक का योग, वैक्रेक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये 11 योग मिला के बोलने हैं ना विपर्याप्त पर्याप्त। नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषाएं, तीनों अज्ञान और आदि के तीन ज्ञान, ये 6 ज्ञान। असंयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाएं, भाव से अपर्याप्त काल की अपेक्षा कृष्ण नील और कापोत लेशा, तथा पर्याप्त काल की अपेक्षा जघन्य तेजो लेशा, ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने वहां। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, क्षायिक सम्यक्त्व के बिना 5 सम्यक्त्व, सौनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब उन्हीं भवनत्रिक देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर आदि के 4 गुणस्थान, 1 संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैक्रिक का योग, 9 योग, नपुसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाएं, तीनों अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान। ये तो अलग अलग जीवों की अपेक्षा है ना, इसलिए 6 ज्ञान कहा। हाँ, एक जीव में नहीं है, एक जीव में हो सकता है तो क्रम से हो सकते हैं, पहले मिथ्या दृष्टि था और बाद में सम्यक दृष्टि, मतलब एट अ टाइम नहीं। हाँ, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाए और भाव से जघन्य तेजो लेशा, ये जघन्य पीत लेशा यहाँ होती है, पर्याप्ति की बात चल रही, पर्याप्त जीवों की। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, क्षायिक सम्यक्त्व के बिना 5 सम्यक्त्व, सौनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब उन्हीं भवनत्रिक देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, देखो अभी पिना गुणस्थान कौन कौन से है, मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि, ये 2 गुणस्थान, चौथा गुणस्थान भवनत्रिक में नहीं होता अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त होने के बाद वो जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ तो हमने 4 गुणस्थान देखे थे, क्योंकि सम्यक को के गिर कर वहाँ तीसरे में भी आ सकता है, है? 1 संगी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियाँ, 7 प्राण, 4 संज्ञाएँ, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, वैक्रिक मिश्र का योग और कारमाण का योग, ये 2 योग, नपुसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाएँ, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान, अपर्याप्त है इसलिए विभंग ज्ञान यहाँ नहीं लिया। असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, अज्ञान के साथ तो 2 दर्शन लगाना है। द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं और भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशा, क्योंकि ये भवनत्रिक वाला अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा होगी उसकी। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व सासाधन, ये 2 सम्यक्त्व, ये सम्यक तो कौन सा होगा मैंने पूछा था ना, हुआ देवांगना में, ये इस अपेक्षा सम्यक तो मार्गणा में कौन कौन लेना, तो मिथ्यात्व और सासाधन। सौनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब ये जो हमने भवनत्रिक में लगाए ना 4 गुणस्थान कहे थे, तो क्रम से अभी इसमें हम एक एक गुणस्थान के आलाप देखेंगे, सामान्य, पर्याप्त, पर्याप्त वगैरह। मिथ्यात्व और सासाधन में तो पर्याप्त पर्याप्त दोनों लगेंगे, सामान्य भी, और बाद में तो वो पर्याप्त का एक ही आलाप लगेगा, तो वो उसकी बात हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होलो।